अंधेरे में सामाजिक परिवर्तन की पहल। अंधेरे में मुक्तिबोध की अंतिम तथा चांद का मुटीणा है कि आखिरी कविता है, यह मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सशक्त कविता है। आलोचकों ने इस कविता को अलग अलग ढंग से पहचानने की कोशिश की और यह आज भी जारी है। इसके संबंध में लिखते समय अधिकांश समीक्षकों ने मुक्तिबोध की रचना के परिप्रेक्ष्य के बजाय राजनीतिक विचारों को उधेड़ने की कोशिश की, जिससे इसका कलात्मक तथा केंद्रीय पक्ष प्रायः अधूरा और अस्पष्ट रह गया। लगभग 40 पृष्ठों की इस कविता के 8 खंड हैं, जिनमें सामाजिक राजनीतिक हालातों और वर्तमान स्थितियों का बेहद तनावपूर्ण जीवंत और रचनात्मक चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध की कविताएं छायावाद, प्रगतिवाद तथा मार्क्सवाद का समन्वय है। यह समन्वय कोई सामान्य बात नहीं की बल्कि कवि की व्यापक दृष्टिकोण तथा चिंतन का परिचायक है। प्रारंभ में वह फ्रैंकफर्ट स्कूल से प्रभावित थे, परंतु बाद में मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की ओर उनका रुझान बढ़ा। किसी अन्य सौंदर्य शास्त्र की अपेक्षा मुक्तिबोध का सौंदर्य शास्त्र नया तथा विचारोत्तेजक है। मुक्तिबोध के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से अंधेरे में कविता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कवि शमशेर की चुनौती है कि नोटेड कामा, यह कविता देश की आधुनिक जन इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दाख्ता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति इसमें फफक रही है और भावनाओं के अनेक कुंफित स्तर पर। यूनाइटेड कामा बंद। कवि श्रीकांत वर्मा का कथन है कि यूनाइटेड कामा, इसे पहचानने में हिंदी कविता को 50 साल लग गए। अब इस मनु को पहचाना गया जब देश अंधेरे में चला गया। यूनाइटेड कामा बंद। अंधेरे में की व्याख्या करते हुए आलोचक नामोर सिंह का मत है कि अंधेरे में कविता की यह अंतिम पंक्तियां इस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं, जो आधुनिक मानव की ज्वलंत समस्या है। वह मानते हैं कि कविता में दो चरित्र हैं, एक काव्य नायक मैं और दूसरा उसका प्रतिरूप वह। यह विभाजन वस्तुतः एक नाटकीय कौशल मात्र नहीं बल्कि इसका आत्मनिर्वासन, सेल्फ एलियनेशन है। उनका मानना है कि कविता का नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है। नामोर सिंह का विवेचन अस्मिता की खोज और आत्मनिर्वासन की धुरी पर घूमता है। अस्मिता अस्तित्ववादी दर्शन का शब्द है जो मार्क्सवादी दर्शन के विपरीत है। यही कारण है कि उन्हें आत्मनिर्वासन की मार्क्सवादी व्याख्या करनी पड़ी। काव्य नायक आत्मनिर्वासित नहीं बल्कि सभी जगह व्याप्त है। वह डी क्लास हो चुका है, वह एलिट नहीं, इसीलिए उसे आइडेंटिटी की तलाश है। आत्मनिर्वासन को आलोचकों ने मुक्तिबोध के व्यक्तित्व का विभाजित व्यक्तित्व तक कह डाला। इस दृष्टि से अंधेरे में कविता का आखिरी हिस्सा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ। हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश, राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत, आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत प्रणति। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। यह पूरी कविता का निष्कर्ष है, जिसमें अनिवार्य आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति की तलाश है। कवि का लक्ष्य परम अभिव्यक्ति की खोज है। वह हर गली, हर सड़क पर, हर चेहरा, हर गतिविधि, हर चरित्र, हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश, राजनीति, परिस्थिति, विवेक, प्रक्रिया आदि का सूक्ष्मता से आकलन करता है। यह तलाश अंधेरे में हो रही है और जारी है। कविता का आरंभ एक तिलस्मी खो के रहस्यमय दृश्य से होता है, जो अत्यंत नाटकीय है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसके चलने की आहट बार बार सुनाई पड़ती है। वह कौन है? अकस्मात भीत के फूले हुए पलस्तर गिरते हैं, चूने भरी रेत गिरती है, पपड़ियां इस प्रकार खिसकती हैं कि स्वयं कोई एक बड़ा चेहरा बन जाता है। नुकीली नाक, भव्य लालाट, दृढ़ हनु, प्रश्न है कि वह कौन? मनु। समीक्षकों को लगा कि मुक्तिबोध के मनु कामायनी के मनु से मिलते जुलते हैं, लेकिन मुक्तिबोध का मनु प्रसाद के मनु जैसा नहीं है। मनु के बारे में मुक्तिबोध कामायणी एक पुनर्विचार में लिखते हैं कि इनोटेड कामा प्रसाद का मनु उसी वर्ग का मनु है जिस वर्ग के प्रसाद जी इनोटेड कामा पर आगे कहते हैं कि इनोटेड कामा मनु एक टाइप है वह वर्ग टाइप जिसकी शासन सत्ता तथा ऐश्वर्य छिन गया हो इस वर्ग की समस्त प्रवृत्तियां मनु में है इनोटेड कामा पर इस प्रश्न के साथ काव्य नायक प्रकट होता है उसे याद आता है कि यह वही रहस्य व्यक्ति है जो कभी शहर के बाहरी पहाड़ी के उस पार तालाब के सलिल के तमस्या शीशे में कोहरीली श्वेत आकृति में प्रकट हुआ था और थोड़ी देर बाद लाल लाल कोहरे से एक रक्तालोक स्नात पुरुष निकलता हुआ दिखाई पड़ा था। रात के अंधियारे में बंद दरवाजे की साकल खटखटाने वाला शायद यही है। इस काव्य नायक को लेकर हिंदी आलोचना में काफी विवाद चला। आलोचक रामविलास शर्मा का कहना है कि यह स्वयं मुक्तिबोध है। इसमें फांसीवादी व्यवस्था का जुलूस, नगर में मार्शल लॉ का वर्णन, इस कविता का शीर्षक आशंका के द्वीप अंधेरे में था। मुक्तिबोध ने आशंका के द्वीप शीर्षक को श्रीकांत वर्मा से कहकर हटवा दिया। इस प्रकार कविता का आशय बदल गया। वास्तव में कवि के मन में आशंका थी कि कहीं हमारे देश में फांसीवाद ना आ जाए। उनकी आशंका सही थी। मुक्तिबोध एक बेहद संवेदनशील, सचेत तथा प्रतिबद्ध कवि थे। उनकी आशंका के पीछे एक जबरदस्त पृष्ठभूमि थी जिसे उन्होंने झेला भोगा था। मुक्तिबोध को आशंका थी कि पूंजीवादी सांप्रदायिक शक्तियां अपने अस्तित्व के लिए जनतांत्रिक व्यवस्था समाप्त कर निरंकुश और बर्बर सत्ता कायम कर सकती हैं। अपने अर्थ लाभ तथा सत्ता पर नियंत्रण के लिए वे किसी हद तक जाकर फासिस्ट हुकूमत कायम करेगी, फिर भी यह हुकूमत सामाजिक परिवर्तन का दमन करेगी। इस प्रकार सैनिक शासन मार्शल लॉ कायम करता है। काव्य नायक जो अपने कमरे में चिंताकुल पड़ा है, शोरगुल सुनकर किसी जुलूस के गुजरने का अनुमान लगाता है। वह गैलरी में आकर देखता है रोमांचकारी और जादुई करामात। वातावरण बहुत भयावह तथा तनावपूर्ण है। एक स्वप्न कथा शीर्षक कविता में इस प्रकार का जुलूस का वर्णन है। जुलूस में शहर के अनेक प्रसिद्ध नेता, शहर का गुंडा डोमाजी उस्ताद तथा मंत्री, पत्रकार, प्रकांड आलोचक, कवि, उद्योगपति अनेक शामिल है। जुलूस अत्यंत रोमांचक तथा अर्थगर्भित है। उसमें भक्तिपद गैस लाइट है। जुलूस की भयावहता तथा रहस्यात्मकता सैनिक हैं, अधिकारी हैं, टैंक, मोर्टार और आर्टिलरी है। जुलूस की भयावहता तथा रहस्यमयता बैंड पार्टी के बाजों की गंभीर तरंग ध्वनियों से पता चलता है। कवि जुलूस के माध्यम से भ्रष्ट, बर्बर, आताताई और निरंकुश सत्ता को पूरी बेबाकी से बेनकाब करता है। पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर सिर्फ व्यापारी, मंत्री या अपराधी ही नहीं बल्कि प्रकांड आलोचक, कवि, पत्रकार तथा विद्वान भी हैं। ये सभी अवसरवादी, क्रांति विरोधी तथा फासिज्म में समर्थक हैं। पूंजीवाद के पक्षधर आलोचक, कवि, विचारक, पत्रकार, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान और अपराध कर्मी सभी दिन में विभिन्न दफ्तरों, केंद्रों और घरों में मिल बैठकर षड्यंत्र करते हैं। कवि ने जुलूस में उनका चेहरा दिखलाकर उन्हें पूरी तरह नंगा कर दिया है। सहसा जुलूस में शामिल कुछ लोग वाचक को देख लेते हैं। उनकी शिनाख्त हो जाने के बाद षड्यंत्रकारी हत्यारे वाचक को जान से मारने के लिए उतावले होते हैं। मारो गोली दागोस साले को एकदम। काव्य नायक कहता है, हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। यह डर और खौफ काव्य नायक के मन में समाया हुआ है। काव्य नायक का स्वप्न एकाएक टूटता है। चार का गजर खड़कता है। उसके शरीर में शक्ति नहीं, वह संभावित घटनाओं से सतर्क है। अकस्मात सेना सड़कों को घेर लेती है। जब कभी जनक्रांति की स्थितियां अनुकूल होती हैं और आम जनता विद्रोह कर उठती है, उसे कुचलने और नस्तनाबूद करने के लिए सत्ता बराबर मार्शल लॉ का प्रयोग करती है। यह हर उस आदमी का पीछा करती है जो व्यवस्था के विरुद्ध जनक्रांति या विद्रोह में कहीं न कहीं शामिल है। मार्शल लॉ है, दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है, कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। कविता के उत्तरार्ध में भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़ की अनेक चार आवृत्ति की गई है। दरअसल मुक्तिबोध जिस बात को अधिक फोकस करना चाहते हैं उसे कई बार दोहराते हैं। ये पंक्तियाँ कवि की मानसिकता के साथ साथ व्यवस्था के जमन चक्र को पूरी तरह उजागर करती है। कवि पुनः बरगद की छाँव में पहुँचता है। बरगद मुक्तिबोध का प्राय प्रिय प्रतीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी प्रिय प्रतीक रहा है। बरगद कवि की कई कविताओं कल जो हमने चर्चाई की थी, पता नहीं, जात का मोह टेढ़ा है आदि में बार बार दिखाई देता है। यह सभी उपेक्षितों, वंचितों, गरीबों का घर है, छत है, वहीं रहता है एक सिरफरा आदमी। वह अचानक पागल होकर आत्मोद्बोधन की गीत गाता है। उस आदमी के बारे में आलोचकों ने अलग अलग मत व्यक्त किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे मुक्तिबोध का स्वर मानते हैं। पागल सिरफरा पागल नहीं, पागल क्रांतिकारी है। परिवर्तन विरोधियों ने उसे पागल करा दिया है। वह कवि को सार्वजनिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। स्वप्न के साथ साथ कवि आत्मनिरीक्षण भी करता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, क्या अपराध भावना से ग्रस्त हो उठता है। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए हम। यह अतीत की निरर्थकता की अभिव्यक्ति है। कुछ हद तक आदर्शों सिद्धांतों को क्रियान्वित न कर पाने की स्वीकारोक्ति है। यह स्वीकारोक्ति तथा आत्मभर्त्सना, भूल गलती, अंतःकरण का आयतन आदि कविताओं में भी देखा जा सकता है। आत्मा का ऐसा प्रखर स्वर निराला के सिवा किसी दूसरे कवि की रचनाओं में सुनाई नहीं देता। कवि पूरी ईमानदारी से यह प्रश्न स्वयं से पूछता है। वह अत्यधिक बेचैन हो जाता है। क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। कवि की बेचैनी सही है। वह चिंतित तथा उद्विग्न है। यत्न नहीं कर पा रहा है कि अपनी बात किससे कहूं, दिल्ली या उज्जैन कहां जाऊं, जहां मेरी बात सुनी जाए। यह कवि की ही बेचैनी नहीं, पूरे प्रगतिशील समाज की भी है। एकाएक कवि की चेतना उसे जागृत करती है। वह चौंक उठता है। एकाएक सिर पर थरथरी दौड़ जाती है। बंदूक धाए धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गिरुआ। गोली की आवाज़ सुनते ही वह पूरे दम से भागता है। कई मोड़ घूमता है। बंदूक छूटने से मकानों के ऊपर गिरुआ रंग छा गया। भय और आतंक की मनोस्थिति में उसका दिमाग चक्कर खाकर एक मुंदे हुए मकान की सीढ़ी पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। संभावित कयास और आतंक की स्थिति से कवि आतंकित और भयभीत है। आतंक और दशहत की स्थिति कवि की अन्य कविताओं चंबल की घाटी में इस चौड़े ऊंचे टीले में भी देखी जा सकती है। मुक्तिबोध की कविताओं में बीच बीच में विशेष स्थितियों में प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से हॉरर और टेरर को सृजित किया गया है। यह हॉरर और टेरर रात के अंधेरे में वातावरण को भयावह और कौतूहलपूर्ण बनाने के साथ साथ मूर्त भी बनाता है। मुक्तिबोध ने कविताओं में आर्केटाइपल बिंबों का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सीजी जुंग का कथन है, इनोटेड कामा, यह एक प्रकार का आदिम बिंब है। मानव के सामूहिक अवचेतन का आर्केटाइपल अंग है। वह मानव के मन में विशेष रूप से हमेशा तथा हर समय विद्यमान रहता है। इनोटेड कामा बंद। आर्केटाइपल बिंब कवि के सामूहिक अवचेतन से ही संबंधित नहीं रहता, बल्कि जब वह अपनी काव्य प्रतिक्रिया से गुजरने लगता है, आदिम बिंब स्वतः आने लगते हैं। कवि ने अंधेरे में इसी प्रकार के आदि बिंबों को प्रयुक्त कर कविता को एक नया आयाम, नई अर्थव्यवस्था प्रदान की है। कवि अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों, विकासों का मूल्यांकन करता हुआ मानव की बौद्धिकता के विकास में जाता है और समूची मानव बौद्धिकता की विकास परंपरा समसामयिक संदर्भों में आंकता है। कविता मानव विकास की निधियाँ जो विस्तृत खो के सांवले तल में निहित हैं और तिमिर को भेद कर चमकते हैं, पत्थर मणियां और रेडियो एक्टिव रत्न, इन पर झरता है प्रबल प्रताप। वास्तव में ये रत्न और मणियां मानव विकास के मणियां हैं। मुक्तिबोध की कुछ अन्य कविताओं में भी इसी प्रकार के चमकते रत्न मिलते हैं, जो सिर्फ चमकीले नहीं अपितु वे अनुभव, वेदना, विवेक के यथार्थ हैं। कवि पाता है कि यह ज्ञान मानव के अनुभव, वेदना और विवेक का ज्ञान है। कवि भीतर से बाहर की ओर आता है। आंतरिक और बाह्य विचारों से टकराहट तीव्र हो जाती है। दृश्य बदलता है। वह देखती है सुनसान चौराहा फैला है, उसके बीच घंटा घर जो गिरवी रंग का और वीरान है। इसी प्रकार के घंटाघर का चित्रण चाँद का मुँह टेढ़ा है में भी है, लेकिन यहाँ समय रुका हुआ है, इसमें कोई गति नहीं। यह गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। यहाँ रात की हवाओं में काल टहलता है। गुंबद बीवर में बैठे बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नज़रों से देखते हैं सब ओर, वे भयानक इरादों का संकेत करते हैं। काव्य नायक सुनसान चौराहों पर खड़ा है, चौक के बीच बंदूक जत्था और टैंकों का दस्ता देखते हुए भाग खड़ा होता है। कविता में कई दृश्यों में तिलक की मूर्ति दिखाई पड़ती है और महात्मा गांधी की छवि उभरती है। तिलक की मूर्ति हिलती है, अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश फूट पड़े सहसा। इस संदर्भ में डॉक्टर अमिला शर्मा का कथन है, यूनाइटेड कामा, जैसी दशा मुक्तिबोध की होने वाली थी उसकी कल्पना मानो तिलक की मूर्ति में करते हैं, यूनाइटेड कामा बन। आलोचक बच्चन सिंह का मत है, यूनाइटेड कामा, तिलक का प्रतीक एक क्रांतिकारी का प्रतीक है किंतु वह प्रभावशाली नहीं बन सका, यूनाइटेड कामा बन। परंतु कवि का संकेत कुछ और है, और वह मत है कि तिलक की राजनीति आज नहीं है, आमूलचूल परिवर्तन के लिए जनक्रांति के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है। विवेक के रंधे से छील कर मुक्तिबोध अपना नया व्यक्तित्व गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आतंकपूर्ण यथार्थ के संदर्भ में कवि विवेक के माध्यम से आत्म यानी सेल्फ की पहचानने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस में वही मैल होता है, देह घिसता है और फिर मैल नहीं छूटती, ये बुद्धिजीवी की अपराध भावना है। तिलक के बाद गांधी दिखाई देते हैं, सर्दी में बोरा उड़े हुए, वे ठंड से कांप रहे हैं। पास आने पर बिजली का झटका लगता है और गांधी जी कहते हैं, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। कवि परंपरा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है, वह नई पीढ़ी को आगे आने की बात करता है। गांधी और तिलक के विचारों से आगे निकलने का प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है में भी गांधी आते हैं। गांधी के प्रति कवि की अटूट श्रद्धा है, परंतु कवि नई पीढ़ी को जनक्रांति के लिए गांधीवादी सिद्धांतों से आगे निकलने की बात करता है। गांधी के कथन से वह सहमत है, मिट्टी के लौंदे में करगीले कणकण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गांधी ने सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की जो कल्पना की थी उसे जनता ही पूरी कर सकती है, जनता द्वारा ही क्रांति संभव है। गांधी जी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काव्य नायक को उसकी विरासत के रूप में शिशु को सौंपते हैं, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। गांधी इसे सिर्फ संभालने और सुरक्षित रखने को कहते हैं, शिशु नन्हा सा आकाश भावी की गंध है। काव्य नायक शिशु के प्रति गंभीर दायित्व का एहसास करता है, शिशु सूरजमुखी के गुच्छे में बदल जाता है, गुच्छे राइफल में। जल्दी जल्दी दृश्य परिवर्तन एक निष्कर्षात्मक अभियान का संकेत देता है, परिवर्तन या क्रांति अहिंसा से संभव नहीं है, इसलिए अहिंसा के स्थान पर बंदूक को ही या कारगर हथियार मानता है। कवि की दृष्टि साफ है, फासिस्ट व्यवस्था को हटाने या उसके ध्वंस के लिए राइफल ही एकमात्र हथियार हो सकता है। दृश्य बदल गया है, गली की एक मकान की अंधियारी सीढ़ियों को चढ़कर काव्य नायक कमरे में दाखिल होता है। टार्च की रोशनी में देखता है भौहों के बीच गोली का सुराख, वह संदेहास्पद समझकर मारा गया क्योंकि वह क्रांतिकारी था। वह मर गया एक युग, मर गया एक जीवन आदर्श, जो निहत्था होगा मारा जाएगा, इसीलिए हथियार या राइफल जरूरी है। कवि का मत है कि सिर्फ जीवन आदर्श में कुछ नहीं होगा, उसे समाज में लागू करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति तथा व्यवहारिक ज्ञान चाहिए, जिसका ब्रह्मराक्षस और कलाकार दोनों में अभाव रहा। फासिस्ट आतताई क्रूर और निर्मम होता है, उसके स्वार्थों के विपरीत काम करने वालों को वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फासिस्ट आतताइयों से जीवन आदर्श तथा नियत्य या अकेले नहीं चिपटा जा सकता, अतः सामूहिक प्रतिरोध करना होगा। काव्य नायक महसूस करता है दोस्तों की खोज और नए नए सहचर सकर्मक सचित भास्कर, क्योंकि वह जानता है कि अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, वह है तो सबके साथ ही। उसकी मुक्ति की अवधारणा व्यापक तथा सार्वजनिक है। काव्य नायक नए नए साथियों को एकजुट करना आवश्यक मानता है, यह उसकी अनिवार्यता भी है, लेकिन जीने से उतरते ही काव्य नायक सहसा विद्रूपों द्वारा पकड़ लिया जाता है। दमन चक्र चलाने वाले आतताई खतरनाक मानकर उसे प्रताड़ित करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। भूल गलती इस चौड़े ऊंचे टीले के अंश अंधेरे में से काफी मेल खाते हैं। दमनकारी सिर की हड्डी तोड़ते हैं, ढूंढते हैं मस्तक यंत्र में कौन कौन विचारों की ऊर्जा कहाँ प्रेस है, कहाँ से पर्चे छपते हैं, इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, उसकी थॉरली स्क्रीनिंग की जाती है। आपातकालीन संक्रमण की स्थिति में सत्ता समाज पर सेंसर लागू करती है, यह सेंसर प्रेस संस्था के सेक्रेटरी तथा बुद्धिजीवी पर लागू है। बुद्धिजीवी अपने को सेंसर की यातना से मुक्त करने की कोशिश करता है, तो मुक्ति की राह निकाल लेता है। कठोर यातनाओं को झेलने के बाद का विनायक रिहा कर दिया जाता है, लेकिन फासिस्ट हुकूमत के गुप्तचर इसका पीछा नहीं छोड़ते। अब साथियों को एकजुट कर क्रांतिकारी संघर्ष की तैयारी होती है। कवि का काम रंगीन पत्थर फूलों से नहीं चलता, सारी यंत्रणा यातना के संभावित खतरे उठाकर पुराने मूल्यों को तोड़ना होगा। उसे अभिव्यक्ति का संकट नजर आता है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, बिना मठों और गढ़ों को तोड़े अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जहां झील के हिमशित सुनील जल में अरुण कमल का पता रहता है, क्या विनायक उस तक पहुंचने के लिए दुर्गम पहाड़ों और झील के जल में धंसने का जोखिम उठाने को तैयार है। कमल क्रांति का प्रतीक है, अतः अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए का विनायक किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार है। लेकिन विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि यूनाइटेड कामा निम्न मध्य वर्ग के औसत बुद्धिजीवी की ही स्थिति है। यह स्थिति सिर्फ निम्न वर्ग के बुद्धिजीवी की ही नहीं, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग की है। जनता उसके लिए विचार विच्छोण मणियों विवेक रत्नों को लेकर अंधेरे में बढ़ती है। जनता उसके विचारों को कार्य रूप में लाना चाहती है, लेकिन उसके साथ बुद्धिजीवी आगे बढ़ नहीं पाता। किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने में दुकेला, पूंजीवादी व्यवस्था जनता को अधिक दिन गुमराह नहीं कर सकती, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। गांधी जी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत के प्रति जनता का मोह भंग होता है, क्योंकि उसमें पूंजी से जुड़े हुए हृदय को बदल पाना संभव नहीं। जनता में जागृति आ रही है, वह जानती है कि संशोधनवादी तरीके से पूंजी से जुड़े हुए हृदय को बदला नहीं जा सकता। जनता समाज परिवर्तन के हामीदार है, क्रांति भी जनता ही करेगी। मेरे लोग कविता में मुक्तिबोध ने लिखा है कि किसी की खोज है उनको किसी नेतृत्व की, यह नेतृत्व क्रांतिकारी ही कर सकता, बुद्धिजीवी नहीं। नामोर सिंह का कहना है कि यूनाइटेड कामा परंपरा से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही यह नेतृत्व करते आए हैं, यूनाइटेड कामा, परंतु मुक्तिबोध को तथाकथित कम बिके हुए बुद्धिजीवियों पर भरोसा नहीं। बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास के उत्तर में नामोर सिंह सफाई देते हैं, यूनाइटेड कामा, निसंदेह कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम क्रीतदास नहीं है, लेकिन वे सबसे असंग रहकर अपने निजत्व की रक्षा में तल्लीन रहते हैं, यूनाइटेड कामा। नामोर जी के कथन से स्पष्ट है एकदम क्रीतदास नहीं पर हैं क्रीतदास ही। यही कारण है कि ब्रह्म राक्षस सामाजिक परिवर्तन पर कर पाने में विफल हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान और कार्य रूप में परिणत नहीं पाता। यही बुद्धिजीवी की ट्रेजिडी है। इसे स्पष्ट है कि वे क्रांति का नेतृत्व नहीं कर सकते। मुक्तिबोध की चिंता सही है, इसीलिए वह दोस्तों तथा नए नए लोगों की तलाश करते हैं। वे सर्वहारा क्रांति के लिए सर्वहारा की तलाश करते हैं। कविता का अंतिम तथा आठवां खंड पुनः भयावहता हारर तनाव और कौतूहल के नाटकीय स्तर से प्रारंभ होता है। नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, का विनायक देखता है। नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई है कहीं गोली चल गई, इसे 6 बार दोहराया गया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का मानना है कि नोटेड कामा इसका बार बार दोहराया जाना अलग अलग स्थितियों के चित्रण में है, इसीलिए यह संरचना का अभिन्न अंग है, यूनाइटेड कामा बन। दरअसल मुक्तिबोध जिस बात को महत्व देते हैं उसके आदर्श में अपनी बात पूरी ताकत से कहते हैं। पंक्तियों का दोहराया जाना एक विशेष अर्थ प्रक्रिया को पुष्ट करता है। कविता हर बार अर्थ की नई परत खोलती है। कवि क्रांति के चित्र को व्यापक धरातल तथा नई अर्थवत्ता प्रदान करने के लिए इस तकनीक का सहारा लेता है। कविता की यह सुसंबद्धता और ध्वनि नगर के वातावरण के आतंक के आस को और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। सड़कों पर सुनसान फैला है, हवाओं में अदृश्य गर्मी है, यह गर्मी ज्वालामुखी की गर्मी है। ज्वालामुखी की गर्मी में वह उग्र क्रांति के जनसंगठन की कार्यवाही देखता है। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जनमन उद्देश्य। क्रांतिकारी एक साथ घूमते, रहते, सोते और खाते हैं। उनका और जनता का उद्देश्य एक है। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सतत संघर्षरत हैं, लेकिन चुप हैं। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविवर निर्वाक चिंतक, शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से सब गप है मात्र किद्वदंती। अधिकांश बुद्धिजीवी किताबी और रोमांटिक होते हैं, ये संशोधनवादी हैं, इसीलिए क्रांति की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते। बुद्धिजीवियों की नपुंसकता को बेनकाब करते हुए कवि कहता है, बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास, किराए के विचारों का उद्भास। आग लगने और गोली चलने पर बुद्धिजीवी की प्रतिक्रिया स्वार्थपरक तथा क्रांति विरोधी है। बुद्धिजीवी आत्मकेंद्रित, आत्मग्रस्त तथा स्वार्थी है, इसलिए क्रांतिकारियों के साथ नहीं हो पाता। बुद्धिजीवी से निराश होकर कवि जनता की ओर मुखातिब होता है। राह के पत्थर ढोंकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए, मिट्टी के लोदों के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया, धूल के कणों में अनहद नाद का कंपन खतरनाक, क्रांति में दद्दा का सोटा भी दांव पेच करता, गगन में नाच रही है कक्का की लाठी, एक एक वस्तु प्राणाग्नि बम है, ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम है। कवि नायक क्रांति के अनेक मोहक दृश्य देखता है। वास्तव में यह स्वप्न नहीं, सच्चाई है। फैंटेसी के माध्यम से कवि सच को उजागर करता है। जनक्रांति का यह दृश्य रोमांटिक नहीं, यथार्थपरक है। ये सभी क्रिया व्यापार क्रांति के सिर्फ सहायक नहीं, क्रांति के हिस्से हैं। इस उद्धरण से साफ है कि परिवर्तन की शक्ति जनता में निहित है। चकमक की चिंगारियां कविता में भी क्रांति का उल्लेख है। इस कविता में आग भभकने का संदर्भ लेते हुए नामोहन सिंह का कहना है, यह आग क्रांति है और ये पंक्तियां क्रांति का आह्वान। डॉक्टर रामलीला शर्मा नामोहन सिंह के कथन पर प्रश्न उठाते हैं कि नामोहन सिंह ने स्पष्ट नहीं किया है कि यह किस तरह की क्रांति है, एकदम सशस्त्र या एकदम असशस्त्र या दोनों के बीच की। डॉक्टर शर्मा कविता के केंद्रीय भाव से हटकर इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, इसे कुछ स्पष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। नामोहन सिंह ने कविता के मुख्य भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कविता में काफी कुछ संकेत में कहा लिखा जाता है। डॉक्टर रामलीला शर्मा क्रांति के संदर्भ में कई प्रश्न उठाते हैं। अपनी पुस्तक नई कविता और अस्तित्ववाद में लिखते हैं, मुक्तिबोध 1943 से क्रांति का सशस्त्र रूप ही देखते आए थे। इसमें संदेह नहीं कि इस क्रांति का संगठन करने वाली कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। अनेक कविताओं में जन क्रांति का उल्लेख, कहीं भी पार्टी के रूप में क्रांतिकारियों के संगठन का उल्लेख नहीं है। हर जगह क्रांति करने वाला, क्रांति की प्रेरणा देने वाला, क्रांति का संगठन करने वाला एक ही व्यक्ति है, वह है कविता का नायक। उसे आप मुक्तिबोध माने चाहे उनसे भिन्न कोई और व्यक्ति। यह क्रांति पार्टी संगठन के बिना स्वतः स्फूर्त ढंग से होती है और कवि का नायक उसका स्रष्टा या दृष्टा। डॉक्टर शर्मा एक वरिष्ठ तथा समझदार आलोचक है, परंतु वह कविता में पार्टी की तलाश करते हैं। उन्हें क्रांतिकारियों के संगठन की चिंता है। उनका मानना है कि क्रांति करने वाला, प्रेरणा देने वाला तथा क्रांति संगठन करने वाला एक ही व्यक्ति है, वह कविता का नायक है। इसमें संदेह नहीं कि क्या बात है, लेकिन वह अकेला नहीं, जनता उसके साथ है। कविता कविता होती है, इतिहास नहीं, जिसमें व्यापक स्तर पर हर चीज का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना संभव हो। इसलिए शर्मा का प्रश्न तार्किक नहीं है। उनका मत है कि क्रांति चाहे सशस्त्र हो या निःशस्त्र, चाहे दोनों का मिला जुला रूप हो, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार वह एक क्रांतिकारी पार्टी संगठित किए बिना संभव नहीं हो सकती। डॉक्टर शर्मा काव्य कला या सृजनात्मकता पर गौर किए बिना मार्क्सवादी धारणा को दृढ़ देने लगते हैं। इसी प्रकार के जड़ विचारों के कारण प्रगतिवादी कविता के विरुद्ध आंदोलन खड़ा हुआ तथा कवियों की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के फ्रेम से कविता को बाहर निकालने का मौका मिला। डॉक्टर शर्मा आगे कहते हैं, मुक्तिबोध का चिंतन का केंद्र है व्यक्ति, जो सर्वथा अनुचित भ्रामक है, क्योंकि मुक्तिबोध के चिंतन का केंद्र व्यक्ति विरोधी है और व्यक्ति का निषेध कर सामाजिकता के पक्षधर है। मुक्तिबोध एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कवि एवं विचारक है। उनके चिंतन का केंद्र व्यापक तथा मानवीय है, इसलिए डॉक्टर शर्मा का कथन अनुचित तथा असंगत है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और फिर भी वह एक आत्मिक प्रयास है। इसमें जो सांस्कृतिक मूल्य परिलक्षित होते हैं वे व्यक्ति की अपनी देन नहीं, समाज की या वर्ग की देन है। इंटर का मत, इस उद्धरण से मुक्तिबोध का विचार स्पष्ट होता है। मुक्तिबोध का मत है कि इंटर का मत, यदि लेखक आज ईमानदार है तो उसे अपने प्रति और अपने युग के प्रति अधिक उत्तरदायी होना होगा। उसे अपनी सौंदर्य अभिरुचि के सेंसर जरा ढीले करने होंगे। विषय संकलन को स्वानुभूत वेग के विश्वचित हाथों में सौंपना होगा। अभिव्यक्त क्षमता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करना होगा। उद्धरण से स्पष्ट है कि मुक्तिबोध का चिंतक वैयक्तिक न होकर व्यापक तथा सार्वजनिक है। सिर्फ अंधेरे में ही नहीं, अन्य कविताओं में कवि की दृष्टि वैयक्तिक न होकर निर्वैयक्तिक है। प्रगतिशील कविता यदि प्रतिबद्ध है तो वह वैयक्तिक हो नहीं सकती। फिर मुक्तिबोध की कविताएं सामाजिक संदर्भों की कविताएं हैं, जिसमें समाज में परिवर्तन की ललक एवं बेचैनी के साथ जोखिम की हद तक जाने का संकल्प है। अंधेरे में कविता का प्रारंभ में तो नहीं, बाद में काफी कुछ लिखा गया। मुक्तिबोध के संदर्भ में आलोचकों के अलग अलग मत हैं। कुछ ने इन्हें मार्क्सवादी, कुछ ने प्रयोगवादी, कुछ ने नई कविता का कवि कहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों ने काव्य के समूचे कथ्य के बगैर उन्हें महान कवि की संज्ञा दी और भावुकतापरक विशेषणों की झड़ी लगा दी। वास्तव में मुक्तिबोध सिर्फ कवि ही नहीं, निबंधकार, आलोचक, कथाकार तथा विचारक भी हैं। उनके विचारों को समझे बगैर तथा उनके काव्य को समझ पाना संभव नहीं होगा। उन्हें समझने के लिए उनके विचारों की तरह तो हमें जाना होगा। हिंदी में निराला के बाद निश्चित ही मुक्तिबोध सर्वाधिक शक्तिशाली कवि के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें नई कविता को छायावादी व्यक्तिकता के कुहासे से नहीं निकाला, उसे एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने कवि को नई दृष्टि, नए विचार, नई भाषा तथा नई अर्थवत्ता प्रदान की। अंधेरे में कविता निश्चित ही छायावादोत्तर कविता का श्रेष्ठ रूप है। इस कविता का सृजन व्यापक मानवीय तथा सामाजिक धरातल पर खींचा गया है। मुक्तिबोध की कविता किसी समाज, देश एवं उसकी आर्थिक संस्कृतियों के हालात का ही चित्र नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि दबे, कुचले, निर्बल सर्वहारा का पक्षधर है। मुक्तिबोध की कविताएं अन्य कवियों की रचनाओं की तरह किसी सीमित व्यक्ति, समाज या प्रकृति का चित्रण नहीं करती, बल्कि मानव मुक्ति के लिए सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करती है। मुक्तिबोध की कविताएं किसी के घर आंगन, ड्राइंग रूम, पशु पक्षी, स्त्री देह या प्राकृतिक विहार की कविताएं नहीं, उनकी कविताएं एक्शन क्रिया की कविताएं हैं जो मानव मुक्ति के लिए अनेक खतरे उठाती हैं, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ती, जूझती, समतामूलक समाज का निर्माण करती है। निसंदेह अंधेरे में हिंदी कविता की विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट कविता है। यह कविता भारतीय भाषा और साहित्य शास्त्र के लिए चुनौती है। मुक्तिबोध आज पहले से अधिक प्रासंगिक बन गए हैं। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जिस घुटन, जड़ता तथा असहायता का आसास बना हुआ है, मुक्तिबोध उस जड़ता को तोड़ते हैं। मुक्तिबोध का रास्ता व्यापक संदर्भों में सामाजिक मानवीय मुक्ति का रास्ता है। इसलिए मुक्तिबोध का समाज परिवर्तन का आह्वान एवं इतिहास की मांग है, या यूं कहूं कि 21वीं सदी की मांग है। मुक्तिबोध की कविता 21वीं सदी में भी साहित्य समाज के लिए चुनौती बनी रहेगी।